पृष्ठ संख्या 215, अध्याय 11, तबले की कुछ विशेष परंपराएं। पहला, गोमांतक गोवा की तबला परंपरा। प्रकृति ने जिसे अपने चारों हाथों से सौंदर्य और कला से समृद्ध किया है, ऐसा गोमांतक गोवा प्रदेश ने भारतीय संगीत की युगों पुरानी परंपरा को अपने आंचल में संभाले रखा है। यहाँ सैकड़ों कलाकार हुए हैं जिन्होंने संपूर्ण देश में प्रसिद्धि प्राप्त की है। गोवा ने जहाँ एक ओर शास्त्रीय गायन संगीत में सुर श्री केशरबाई केलकर तथा सुगम संगीत में लता मंगेशकर जैसी संगीत सम्राज्ञियाँ दी हैं, वहाँ दूसरी ओर लय भास्कर खापरू मामा सन 1880 ईस्वी से सन 1953 ईस्वी जैसा लय का स्वामी भी दिया है। गोवा की परंपरा में एक विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सारे भारत में संगीत कला का कला पर मुसलमान कलाकारों का प्राधान्य रहा, तब गोवा में हिंदू कलाकारों ने संगीत को संभाला तथा उसे गौरवान्वित किया। यही विशेषता हमें बनारस घराने में भी देखने को मिलती है। तबला वादन के क्षेत्र में गोवा का अपना पृथक अस्तित्व है। वहाँ तबले के बहुत से उत्कृष्ट कलाकार हुए, विशेषतः लयकारी के क्षेत्र में पंडित खापरू मामा पर्वतकर जी ने जो अद्वितीय स्थान प्राप्त किया था, वह आज भी संगीत जगत में रिक्त है। वे लयकारी के ऐसे प्रकांड पंडित थे कि उनके असाधारण लय चमत्कारों ने बड़े बड़े उस्तादों और तालज्ञों को स्तब्ध कर दिया था। एक हाथ से झपताल, दूसरे हाथ से आड़ा चार ताल, एक पैर से एक ताल, दूसरे पैर से सवारी और मुंह से तीन ताल बोलकर सबका सम एक साथ ले आने की अप्रतिम कला उन्हें सहज साध्य थी। लयकारी के ऐसे अनेक चमत्कार वे सरलता से किया करते थे जिन्हें करना तो दूर, सोचना या समझना भी असंभव सा है। आज के तैयारी के युग में जहां सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए तबलिया उद्यम मचाने में ही नहीं चूराता, जहां तबले पर रेलगाड़ियां चलाने को कलाकारी समझी या समझाई जाती हैं, जहां हमारे पुराने उस्तादों की अप्रतिम बंदिशों को सुनना स्नेह स्नेह दुर्लभ होता जा रहा है, वहां खापरू मामा जैसी असाधारण लयकारी की बातों के लिए सोचना दुष्कर नहीं तो क्या है। लय तबले का प्राण है। लयकारी अपने आप में एक विद्या है, वह गणित है। इस गणित के महत्व को यदि तबले से निकाल दिया जाए तो हमारा तबला दरिद्र हो जाएगा। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि केवल गणित शास्त्र की सूक्ष्मताओं और विचित्रताओं की अभिव्यक्ति ही तबला वादन नहीं है। तबले में घरानेदार बंदिशों का समावेश, तैयारी, स्पष्टता एवं माधुरी का सुमेल तथा अभिव्यक्ति की मौलिकता अत्यंत महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग है। अतः वही कलाकार उच्च कोटि का तबला वादक कहलाया जा सकता है जिसके वादन में बोल बंदिश, स्पष्टता, मधुरता, लयकारी, तैयारी तथा आकर्षक प्रस्तुतिकरण की मौलिक शैली जैसे सभी अंगों का विवेक बुद्धि से सुमेल हुआ हो। पृष्ठ संख्या 216। खापरू मामा के पद चिन्हों पर चल करके उनके सुपुत्र पंडित राम कृष्ण पर्वतकर ने भी तबला वादन में विशेषतः लयकारी के क्षेत्र में काफी प्रगति की थी। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक थे और अपने पिता की तरह ही लयकारी में निष्णात थे। दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु युवावस्था में ही सन 1959 ईस्वी में काशी में ही हुई। खापरू मामा के शिष्यों में श्री विश्वंभरनाथ पर्वतकर तथा डॉक्टर मलबा राव सरदेसाई के नाम आते हैं। डॉक्टर मलबा राव सरदेसाई ने तबला तथा गोमांतक की कला पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। गोवा के गत पीढ़ी के दूसरे सुप्रसिद्ध तबला वादकों में सर्वश्री मुरारबा मुरारबा पेट रेकर रामचंद्र गोवेकर घनश्याम राव गुरव पर्वतकर लक्ष्मण राव काले हरिश्चंद्र जाम्बाव लीकर रामा राव फातर्पेकर रघुनाथ माशेलकर यशवंत विठल नाईक वल्ले मामा दत्ताराम नंदोडकर रघुनाथ पेंटर शंकर गुणीजन कामू राव मंगेशकर घुंडी कालकर मनोहर शिरगांवकर इत्यादि अनेक नाम उल्लेखनीय हैं, जिनमें पंडित यशवंत विठल नाईक उर्फ वल्ले मामा पंडित कामू राव मंगेशकर श्री दत्तात्रेय नंदो डकर तथा श्री शंकर गुणीजन अपने समय के प्रतिभावान कलाकार माने जाते हैं। श्री शंकर गुणीजन के अनेक शिष्यों में अमरावती के श्री शंकर राव मूर्तिजा पुरकर तथा प्रशिष्य लड्डू खां के नाम उल्लेखनीय हैं। पंडित कामू राव मंगेशकर की अद्भुत संगत की प्रशंसा करने वाले अनेक रसिक जन आज भी उपस्थित हैं। गोमांतक के बहुतेरे कलाकार अपनी जीविका हेतु गोवा छोड़कर महाराष्ट्र मैसूर उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में तथा मुंबई पुणे बेलगांव धारवाड़ हैदराबाद तथा दूसरे अनेक बड़े शहरों में जा बसे हैं। आधुनिक काल में गोवा के कुछ प्रतिष्ठित कलाकारों में सर्वश्री परशुराम कामूलकर गोपीनाथ मंगेशकर यशवंत केलकर संभाजी पर्वतकर विठल आचरेकर अन्ना अमोड़कर जी एम पर्वतकर पंडरीनाथ नागेशकर यशवंत नागेशकर श्रीपाद नागेशकर प्रभाकर च्यारी इत्यादि के नाम लिए जाते हैं। उस्ताद मुनीर खां के सुप्रसिद्ध शिष्य पंडित सुब्बा राव अंकोलकर गोवा के ही थे, जो जामनगर के बलदेव शाह परंपरा से भी संबंधित थे। हुबली के श्री एस वाय नागवेकर पेड़ के पंडित विनायक राव घांग्रेकर तथा गोवा मुंबई के पंडित पंढरीनाथ नागेशकर ने उनसे सीखा था। पंढरीनाथ के अनेक शिष्य हैं, जिनमें श्री सुरेश तलवलकर श्री नाना मूले तथा उनके सुपुत्र श्री विभव नागेशकर प्रमुख हैं। तबले में गोमांतक का अपना एक स्वतंत्र बाज है। एक अलग प्रकार के ठेके बजाने की प्रथा भी देखी जाती है, जो गोवा के बाहर कम दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में झप ताल का ठेका प्रस्तुत किया जा रहा है। पृष्ठ संख्या 217 झप ताल ठेका है। धाकत धागे न तागे न ताकत धागे न धागे न। दूसरा, मुरादाबाद की परंपरा। तबले के क्षेत्र में मुरादाबाद की कोई अपनी विशेष परंपरा या बाज नहीं है। वहाँ जन्मे प्रायः सभी सुप्रसिद्ध कलाकारों ने किसी न किसी परंपरागत घरानेदार उस्तादों से ही शिक्षा पाई, जिनकी अविरत साधना और सिद्धि ने इस शहर को एक पृथक महत्व प्रदान किया तथा एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जिसके कारण मुरादाबाद का नाम तबले के क्षेत्र में सविशेष विख्यात हुआ। मुरादाबाद के कलाकारों पर पूरब के लखनऊ तथा फरुखाबाद घराने का सविशेष प्रभाव है। 19वीं शती के अंत में मुरादाबाद में उस्ताद मोहम्मद हुसैन खां नाम के एक तबला वादक हुए, जो देश भर में प्रसिद्ध थे। वे लखनऊ घराने के सुविख्यात कलाकार उस्ताद मोहम्मद खां के शिष्य थे। उस्ताद मोहम्मद हुसैन खां के प्रमुख शिष्यों में उस्ताद मौला बख्श का नाम आता है, जो गत पीढ़ी के श्रेष्ठ तबला नवाजों में से एक थे। उस्ताद मौला बख्श फरुखाबाद घराने के प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद रहीम बख्श के पुत्र थे। यही कारण है कि पिता की ओर से फरुखाबाद घराने की तथा गुरु की ओर से लखनऊ घराने की विद्या का विपुल भंडार उन्हें कंठस्थ था। रामपुर के नवाब उनके वादन पर इतने मुग्ध थे कि उनको दरबारी कलाकार का सम्माननीय स्थान देकर उन्हें रामपुर ले गए थे। उनके प्रमुख शिष्यों में गोपाल जी तथा काली बाबू के नाम उल्लेखनीय हैं। मुरादाबाद शहर उस्ताद अहमद जान थिरकवा का नैनिहाल रहा है और थिरकवा खां का बचपन मुरादाबाद में बीता। उस्ताद के नाना करम इतल बख्श तथा उनके भाई उस्ताद इलाही बख्श दोनों उत्कृष्ट तबला वादक थे। वे फरुखाबाद के हाजी विलायत अली के शिष्य थे। इन दोनों भाइयों ने हाजी साहब का शिष्यत्व उनके युवा काल में ग्रहण किया था। फलतः मरते समय हाजी विलायत अली ने अपने अंतिम शिष्य छुन्नू खां बरेली वाले का हाथ उस्ताद इलाही बख्श के हाथों में सौंप कर छुन्नू खां की अधूरी तालीम को पूरा करवाने का वचन उनसे लिया था, जिसे उस्ताद इलाही बख्श ने अपने अंतिम समय तक निभाया। उस्ताद करम इतल बख्श के तीन पुत्र थे, उस्ताद फयाज हुसैन खां, उस्ताद बसुआ खां तथा उस्ताद चांद खां। यह तीनों भाई अपने पिता तथा चाचा से सीख करके छोटी उम्र में ही तबले का अच्छा ज्ञान सीख लिए, जिनमें उस्ताद फयाज हुसैन खां का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उस्ताद फयाज हुसैन ने मियां सलारी खां के प्रमुख शिष्य गुलाम हुसैन खां से भी तबले की दीर्घकालीन शिक्षा प्राप्त की थी। फलतः तबले के क्षेत्र में आज भी उस्ताद फयाज हुसैन खां मुरादाबाद वाले का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है। पृष्ठ संख्या 218। ये तीनों भाई उस्ताद अहमद जान थिरकवा के मामा लगते थे, अतः उस्ताद थिरकवा की प्राथमिक शिक्षा मुरादाबाद में उनके मामाओं द्वारा, विशेषतः उस्ताद फयाज हुसैन खां द्वारा हुई थी। उस्ताद अहमद जान के एक चाचा उस्ताद शेर खां भी मुरादाबाद के रहने वाले थे। वे विद्वान तबला वादक थे तथा फरुखाबाद के उपरांत दिल्ली घराने के तबले के भी उत्तम ज्ञाता थे। उस्ताद शेख अब्दुल करीम उन्हीं के शिष्य हैं। उस्ताद अहमद जान थिरकवा ने अपने चाचा उस्ताद शेर खां से भी सीखा था। उस्ताद थिरकवा के ममेरे भाई लंगड़े अहमद अली खां भी अच्छे तबला वादक थे, जिन्होंने अपने पिता उस्ताद चांद खां तथा चाचा उस्ताद फयाज हुसैन खां तथा उस्ताद बसुआ खां से शिक्षा प्राप्त की थी। सुप्रसिद्ध तबला नवाज स्वर्गीय शमसुद्दीन खां का बचपन मुरादाबाद में ही बीता। कहते हैं कि अहमद जान और शमसुद्दीन दोनों एक साथ बैठकर उस्ताद फयाज हुसैन से तालीम लिया करते थे। इसके पश्चात दोनों एक साथ मुंबई आए तथा उस्ताद मुनीर खां साहब से के गंडाबद्ध शिष्य बन गए। मुरादाबाद की परंपरा में उस्ताद मुस्तफ़ा हुसैन खां तथा उनके पुत्र उस्ताद गुलाम हुसैन खां के नाम भी आते हैं। वे दोनों मियां सलारी खां के शिष्य थे। उस्ताद गुलाम हुसैन खां अपने समय के उच्च कोटि के कलाकार माने जाते थे। उन्होंने अनेक नामी शिष्य तैयार करके तबले का विपुल प्रचार किया। तदुपरांत मुरादाबाद के उस्ताद नजीर खां से पंडित जगन्नाथ प्रसाद भट्ट ने शिक्षा पाई थी और उस्ताद नन्हे खां मुरादाबाद वाले से उस्ताद अजीम खां जावरे वाले ने शिक्षा पाई थी। खेद है कि उस्ताद नन्हे खां तथा उस्ताद नजीर खां के गुरुओं के नाम प्राप्त नहीं हो सका, किंतु ये दोनों मुरादाबाद के ही निवासी थे। तीसरा, उस्ताद मुनीर खां की परंपरा। श्री अरविंद मुलगांवकर कृत मराठी पुस्तक तबला की प्रथम आवृत्ति के पृष्ठ 311 में उस्ताद मुनीर खां की परंपरा को मुंबई घराने के नाम से संबोधित किया गया है। उस्ताद मुनीर खां देश के समर्थ तबला नवाज थे। उनकी शिष्य परंपरा अत्यंत विशाल है। सर्वश्री अहमद जान थिरकवा, अमीर हुसैन खां तथा गुलाम हुसैन खां जैसे समर्थ कलाकारों के वे प्रणेता थे। ऐसे महान कलाकार तथा उनकी शिष्य परंपरा की चर्चा यद्यपि दिल्ली तथा फरुखाबाद घराने के इतिहास में हो चुकी है, तथापि तबले के क्षेत्र में उनके व्यक्तिगत योगदान पर पुनः विचार कर लेना यहाँ आवश्यक होगा। उस्ताद मुनीर खां के जीवन का बहुत बड़ा भाग मुंबई में बीता। उनका जन्म दिल्ली के पास मेरठ में हुआ था। केवल 9-10 वर्ष की अल्प आयु में विद्योपार्जन के हेतु वे मुंबई आए और वर्षों पर्यंत वहीं रहे। उनकी संपूर्ण तालीम मुंबई में हुई थी। तबला के अतिरिक्त वे पखावज के भी अच्छे जानकार थे। मेरे पूज्य गुरु उस्ताद अमीर हुसैन खां कहा करते थे कि उस्ताद मुनीर खां ने अलग अलग घरानों के 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की थी, जिसके फलस्वरूप उनके पास प्रत्येक घराने की अनमोल विद्या का विपुल भंडार था। उस्ताद मुनीर खां अपने जीवन के अंतिम समय महाराज चक्रधर सिंह के आमंत्रण पर रायगढ़ दरबार में बार बार जाया करते थे और वहीं उनका देहावसान सन 1937 ईस्वी में हुआ। पृष्ठ संख्या 219। यह उस समय की बात है जबकि संगीत में घरानों का महत्वपूर्ण चरमोत्कर्ष पर था। घरानेदार कलाकार अपने घराने की विद्या को छोड़कर दूसरे घराने की बाज त्याज समझते थे। ऐसे समय में पुरातन वादियों के बीच में रहते हुए भी उस्ताद मुनीर खां अपने युग से 100 वर्ष आगे थे। उन्होंने अपने विशाल ज्ञान के आधार पर घरानों की शैलियों का सम्मिश्रण करके एक अनोखी नवीन शैली को जन्म दिया। जबकि उस समय की परिस्थिति में उनकी कल्पना भी दुर्लभ थी। उस्ताद मुनीर खां ने विविध बाजों की पृष्ठभूमि पर अनेक नवीन रचनाएं की तथा अपनी इस ज्ञान संपत्ति को उदार मन से अपने विशाल शिष्य समुदाय में बांटकर आने वाले युग को एक नवीन पथ की प्रति अग्रसित किया था। महाराज, महाराष्ट्र में आज जो तबला बज रहा है उसका अधिकांश श्रेय उस्ताद मुनीर खां तथा उनके महारथी शिष्य उस्ताद अहमद जान थिरकवा एवं उस्ताद अमीर हुसैन खां को जाता है। श्री अरविंद मुलगांवकर ने उनकी शैली को मुंबई घराना कहा है। घरानों का अर्थ अलग होता है। उस्ताद मुनीर खां की शैली घराने की परिधि में नहीं बैठती, किंतु तबले के क्षेत्र में उनके अनन्य योगदान को देखते हुए उनकी परंपरा को यदि मुंबई परंपरा के नाम से संबोधित किया जाए तो उचित होगा, किंतु मुंबई घराना अथवा मुंबई परंपरा के नाम का समर्थन मुझे कहीं किसी भी कलाकार अथवा संगीतज्ञ से प्राप्त नहीं हुआ। किसी भी तबला वादक को मुंबई घराने के पृथक अस्तित्व की जानकारी नहीं है, अतः अनुमान है कि यह श्री मुलगांवकर की अपनी निजी धारणा होगी। आज जब घराने का सूर्य अस्त हो चला है तब एक नवीन घराने के उद्भव की कल्पना करना कहाँ तक उचित है, वह तो आने वाला कल ही बताएगा। निस्संदेह उस्ताद मुनीर खां ने सैकड़ों शिष्यों को तैयार करने के साथ साथ स्वतंत्र वादन के प्रस्तुतिकरण की नवीन शैली का प्रारंभ करके इस क्षेत्र में नवीन चेतना का संचार किया है। आज के स्वतंत्र तबला वादन में पिछले 50 वर्षों से काफी अंतर दिखाई देता है। आज का तबला सभी घरानों के मेल मिलाप का तबला है। हम केवल दिल्ली बाज ही नहीं बजाते हैं। हाँ, हमारे तबले में पूरब बाज के सिवा और कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ऐसा अधिकार पूर्वक कहने वाले कलाविद उंगलियों पर ही गिने जा सकते हैं, उतने भी कदाचित ही शेष बचे हैं। चौथा, बिहार की बढ़िया परंपरा। गायन वादन के क्षेत्र में बिहार में संगीत की प्रमुख चार परंपराओं का अभ्युदय हुआ माना जाता है। पहला, बढ़िया परंपरा। दूसरा, अमता परंपरा। तीसरा, बेतिया परंपरा। चौथा, गया परंपरा। प्राचीन संगीत विद्याओं में ध्रुपद धमार तथा पखावज का प्रमुख रूप से चलन होने के कारण उपयुक्त परंपराओं में प्राचीन गायन वादन शैलियों का असर व प्रभाव देखा जाता है। हम देख चुके हैं कि वहाँ के गुणग्राही राजाओं एवं जमींदारों के संगीत प्रेम के कारण बिहार के विविध राजदरबारों एवं जमींदारों में संगीत की उत्कृष्ट कलाकारों को आश्रय मिलता था। फलस्वरूप देश के इस संभाग में संगीत का अच्छा प्रचार रहा। पृष्ठ संख्या 220। और कला एवं कलाकारों का अत्यंत आदर सम्मान भी होता रहा। तदुपरांत दूसरे राज्यों की भांति वहां देवाश्रय में भी संगीत कला पनपती रही, जिसका एक प्रमुख उदाहरण बिहार की सुप्रसिद्ध बढ़िया परंपरा है, जो तबले के बढ़िया घराने के नाम से बिहार में सर्वत्र प्रचलित है। कृपया ध्यान रहे कि हमारा विषय केवल पखावज और तबले से संबंधित होने के कारण अमता बेतिया या गया में फैली संगीत की दूसरी विधाओं की परंपरा पर हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। तबले की बढ़िया परंपरा। बिहार की बढ़िया तबला परंपरा सन 1900 ईस्वी के आसपास फैली है। पटना के प्रसिद्ध गायक पंडित श्यामदास मिश्र के अनुसार बढ़िया परंपरा के प्रवर्तक पंडित चंडी शरण शर्मा माने जाते हैं, किंतु इस परंपरा को सुप्रसिद्ध एवं बहुश्रुत करने का प्रमुख श्रेय पंडित चंडी शरण के सुयोग्य पुत्र एवं शिष्य पंडित बच्चा मिश्र को जाता है। यहाँ ध्यान हो कि बनारस घराने के पंडित समता प्रसाद के पिता पंडित वाचा मिश्र और बढ़िया के पंडित बच्चा मिश्र दो पृथक व्यक्ति हैं। पटना के निकट बढ़िया नगर के निवासी पंडित चंडी शरण मिश्र अपने समय के विख्यात पखावजी एवं ध्रुपद गायक थे। उन्होंने अपने कला गुण संपन्न पुत्र बच्चा को पखावज और तबला की परंपरागत शिक्षा बचपन से ही देनी आरंभ की थी। श्री बच्चा मिश्र का जन्म सन 1887 ईस्वी में हुआ था। बाल्यावस्था से ही वे विलक्षण बुद्धि के प्रतिभाशाली बालक थे। विविध प्रकार की लयकारियों में खेलने का अद्भुत गुण उनमें छुटपन से ही था। उन्हें अपने पिता के उपरांत दूसरे उच्च कोटि के कला महर्षियों से सीखने का भी अवसर मिला। सौभाग्य से उन दिनों लोदीपुर बिहार के एक आश्रम में हैदराबाद निजाम के राजगुरु संगीतज्ञ श्री 1008 स्वामी नारायण नरसिंह सरस्वती का पदार्पण हुआ। स्वामी सरस्वती जी दक्षिण भारतीय संगीत के प्रकांड पंडित थे। उनके साथ उनके प्रमुख शिष्य पंडित लक्ष्मण राव जी भी लोदीपुर आश्रम में पधारे थे। पंडित लक्ष्मण राव जी अपने गुरु की ही भांति संगीत के अच्छे ज्ञाता तथा लयकारी के परम विद्वान थे। इन दोनों के यशगान की गाथा तथा उनके लोदीपुर पधारने की चर्चा सुनकर पंडित चंडी शरण मिश्र अपने पुत्र बच्चा को लेकर बढ़िया से लोदीपुर आश्रम में आ पहुंचे। सायंकाल की वंदना आरती का समय था। गायन का कार्यक्रम अभी आरंभ होने ही जा रहा था कि अचानक मंदिर के पखावज वादक ने देखा कि उनकी पखावज फट गई है। वादक निराश हो गया, क्योंकि अब बजाना संभव नहीं था। अतः उसने स्वामी जी के समक्ष खेद सहित अपनी असमर्थता प्रकट की। बच्चा और उसके पिता चंडी शरण ने जब यह बात सुनी, तब उन्होंने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। स्वामी जी के चरणों में विनय पूर्वक प्रार्थना करके बच्चा ने स्वयं को तबले पर साथ संगत करने देने की उनसे अनुमति मांगी, जो उसे मिल गई। और इस प्रकार प्रतिभाशाली बालक बच्चा को स्वामी जी सन्मुख तबला बजाने का अनायास ही अवसर मिल गया। बच्चा ने पखावज शैली के बोल परन तबले पर कुशलतापूर्वक बजाने आरंभ किए, जिसे सुनकर स्वामी जी एवं सभी श्रोतागण आनंदित हो गए। हर्षित होकर स्वामी जी ने बच्चा मिश्र को गले से लगा लिया और उसे तालवादी की दीर्घ शिक्षा देने के लिए उन्होंने उसे उसके पिता चंडी शरण से मांग लिया। पृष्ठ संख्या 221। इस प्रकार बाल्यावस्था से ही बच्चा मिश्र आश्रमवासी हो गए और स्वामी नारायण सरस्वती की आज्ञा से स्वामी जी के प्रमुख शिष्य पंडित लक्ष्मण राव के चरणों में बैठकर गुरु शिष्य परंपरानुसार उनसे विधिवत शिक्षा ग्रहण करने लगे। 12 वर्ष तक सिलसिला चलता रहा और मृदंगम पर दक्षिण भारतीय ताल पद्धति का तथा विविध प्रकार की लयकारियों की सूक्ष्मताओं का दीर्घ अभ्यास होता रहा। बच्चा जी को अपने विद्वान पंडित पिता पंडित चंडी शरण से पखावज एवं तबला वादन की उत्तम शिक्षा तो पहले से ही मिली थी और बाद में भी मिलती रही। अतः बच्चा जी के वादन में उत्तर एवं दक्षिण दोनों ताल पद्धतियों की सूक्ष्मताओं का अद्भुत संगत देखने को मिलता था। 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात बच्चा जी के सन्यासी गुरु पंडित लक्ष्मण राव ने जीवंत समाधि लेने का निर्णय किया, किंतु इसके पूर्व उन्होंने अपने प्रिय शिष्य बच्चा को उत्तर एवं दक्षिण की ताल पद्धतियों के संयोग से लयकारी की प्रमुखता पर आधारित तबले के एक नए घराने की स्थापना करने का आदेश दिया। जिस स्थान पर पंडित लक्ष्मण राव ने समाधि ली थी वहां आज शिव मंदिर की स्थापना करके प्रतिवर्ष विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। गुरुदेव की समाधि के पश्चात बच्चा जी अपने पैतृक नगर बढ़िया लौट आए। गुरु की आज्ञा को पूर्ण करने के हेतु उन्होंने लय और ताल का गहन अन्वेषण करना आरंभ किया। उत्तर एवं दक्षिण पद्धतियों की सूक्ष्मताओं को परखने का सन्निष्ठ प्रयत्न किया तथा एक ऐसी नई वादन शैली का निर्माण किया जो लय की चमत्कारिकता पर विशेष रूप से आधारित थी। उन्होंने अपनी उस नवीन शैली में छंद, नवहक्का, झूलान, कायदा, गत, परन इत्यादि अनेक नई बंदिशों की रचना की तथा उसे अपने पुत्र एवं शिष्यों में सिखाया। इस नवीन शैली के लय वैचित्र से प्रभावित होकर तत्कालीन विद्वानों ने उसे मान्यता दे दी और इस प्रकार बढ़िया नगर में निर्मित होने के कारण यह नवीन वादन शैली बढ़िया घराने के नाम से प्रसिद्ध हुई। बढ़िया घराने के प्रतिनिधि कलाकारों में पंडित बलराम मिश्र ठाकुर, डॉक्टर ठाकुर प्रताप सिंह, श्री भागवत प्रसाद सिंह, श्री चंद्र मौली सिंह, श्री मदन बाबू, श्री शत्रुघ्न सिंह, बच्चा जी के पुत्र डॉक्टर श्यामदास मिश्र, श्री मिथिलेश शर्मा, श्री भगवान मिश्र, श्री राज भूषण मिश्र, श्री ललित भूषण मिश्र, श्री गीता झा, श्री रामनाथ सिंह, श्री हरिनारायण सिंह आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। पंडित बच्चा मिश्र का निधन सन 1966 ईस्वी में हुआ। बढ़िया घराने की वादन विशेषता। तबले की रचनाओं में लय सौंदर्य का प्रभुत्व बढ़िया घराने की प्रमुख विशेषता है। प्रत्येक मात्रे की चक्रदार परने, नवहक्का, पेशकार, झूलना कायदा, कठिन तिहाइयां, टुकड़े, उठान, गत परन आदि अनेक रचनाएं बढ़िया परंपरा की विशेषता है, जिन्हें इस घराने के कलाकार श्रद्धापूर्वक बजाते हैं। पंडित बच्चा मिश्र तबले के उपरांत गायन एवं जल तरंग बजाने में भी अच्छे विद्वान थे। उन्होंने ध्रुपद धमार गायन, ख्याल टप्पा, तराना, चतुरंग आदि गायन प्रकारों की बंदिशों की भी रचना की थी। पृष्ठ संख्या 222। पखावज के बोलों को तबले पर खुले अंग से बजाना, पूरे हथेली व पांचों अंगुलियों के प्रयोग से जोरदार वादन प्रस्तुत करना, तबले बाएं का सुंदर समन्वय तथा बोल पढ़ंत की विशेषता इस परंपरा की प्रमुख खासियत है। बढ़िया परंपरा में एकल वादन के उपरांत विद्वतापूर्ण सात संगति का भी विशेष प्रचलन रहा है। 5वां, उड़ीसा की तबला परंपरा। तबले के क्षेत्र में उड़ीसा की अपनी कोई परंपरा नहीं है। वहां तबले का प्रचार बाहर से आए हुए अन्य प्रांत के कलाकारों द्वारा हुआ, जिनमें ग्वालियर के पंडित रामप्रसाद मिश्र तथा जयपुर के उस्ताद बशीर खां तथा उस्ताद नजीर खां प्रमुख हैं। इनके उपरांत मिदनापुर के पंडित द्वी जैन बाबू तथा पंडित पंचानन सान्याल ने भी वहां तबले के प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दुर्भाग्य से इन सबकी शिष्य परंपरा प्राप्त नहीं हो सकी। भुवनेश्वर, पुरी और कटक के कलाकारों में पंडित जगमोहन नायक एक कुशल तबला वादक माने जाते थे। उनके प्रमुख शिष्यों में श्री कनाईलाल घोष तथा श्री क्षेत्रमोहन कौर प्रमुख हैं। श्री क्षेत्रमोहन कौर के शिष्यों में सर्वश्री देवेंद्र दत्त, भगवती आचार्य तथा उनके सुपुत्र उमेश चंद्र कौर उल्लेखनीय हैं। कनाईलाल घोष के शिष्यों में राधा गोविंद घोष, जय कृष्ण कहाली तथा भागवत दत्त प्रमुख हैं। छठवां, पखावज के घरानों का तबला परंपरा, नाना पानसे घराने की तबला परंपरा। एक युग था जब भारतीय संगीत के ताल वाद्यों पर मृदंग तथा उसके कलाकारों का एक तंत्री राज्य था, किंतु आज समय के चक्र ने सब कुछ परिवर्तित कर दिया है। आज संगीत के हर क्षेत्र में तबले का बोलबाला है, अतः पखावज के अनेक कलाकार तबले के प्रति आकर्षित होकर जीवन निर्वाह हेतु उसे अपनाने लगे हैं। इसे समय के साथ किए गए समझौता का प्रतीक कहा जा सकता है। नाना पानसे का घराना मूलतः पखावज का घराना है। पखावज की परंपरागत विद्या इस घराने में पिछली दो सदियों से चली आ रही है, किंतु नाना पानसे स्वयं बड़े बुद्धिमान तथा समय सूचक व्यक्ति थे। उन्होंने समय की परिवर्तनशील धारा को उन दिनों पहचान लिया था जब पखावज की परंपरा का सूर्य पूर्णतः मध्याह्न में था। आने वाले युग में तबले का प्रभुत्व होगा, इस बात को समझकर उन्होंने अपने जीवन काल में ही पखावज के साथ साथ तबले की वादन शैली पर भी गंभीरता से विचार किया। पखावज की अपनी वादन शैली तथा बोल बंदिशों में आवश्यक परिवर्तन करके उन्होंने तबले के एक नवीन वाद्य का आविष्कार किया और उसे अपने शिष्यों को सिखाकर उसका प्रचार किया। पंडित बामन राव चंदौड़कर जैसे अनेक व्यक्ति उनके प्रमुख तबले के ही शिष्य थे। इस प्रकार इनसे तबले की एक नवीन परंपरा प्रारंभ हुई जो उनके शिष्यों प्रशिष्यों में फैलकर नाना पानसे घराने की तबला परंपरा के नाम से भारत में प्रसिद्ध हुई। पखावज की तरह ही तबले के क्षेत्र में भी नाना पानसे जी के शिष्य परिवार की सूची बहुत लंबी है। पृष्ठ संख्या 223, नाना पानसे घराने की वादन शैली की विशेषताएं। पखावज के बोल तबले में परिवर्तित किए जाने के कारण इस बाज पर पखावज का गहरा प्रभाव था। तबले के सर्वसाधारण सुप्रसिद्ध घरानों के बाजों से वह कुछ भिन्न है तथा उसकी बंदिशों एवं बोल निकास में भी अंतर दिखाई देता है। उसकी गत तथा पर्णों में हमें कविता की पंक्तियों सा आनंद मिलता है। महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में इस बाज का विशेष प्रचार है। महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांवों या शहरों में किसी न किसी से यह बाज सुनने को मिल जाता है। ब, मंगल वेढेकर घराने की तबला परंपरा। नाना पानसे की तरह मंगल वेढेकर घराने में भी तबले का प्रचार हुआ। पंडित केशव बाबू जोशी मंगल वेढेकर के समय तक मंगल वेढेकर घराने में तबले का प्रचार नहीं था। पिछले 50-60 वर्षों से इस घराने में भी तबले का प्रवेश हुआ और आज तो यह हालत है कि इस घराने में तबले का ही प्रचार विशेष रूप से देखने को मिलता है। संभवतः 60 वर्ष पूर्व मृदंगाचार्य पंडित दत्तोपंत मंगल वेढेकर जी ने जब तबले के प्रचार को दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने भी तबले की वादन शैली एवं विशेषताओं पर ध्यानपूर्वक मनन किया। अपने पखावज घरानों की शैली में बंद बाज का प्रयोग करके एक नवीन शैली का आविष्कार किया और उसका प्रचार किया। आज मंगल वेढेकर घराने में पखावज की ही भांति तबला वादन का भी प्रचार है। पंडित दत्तोपंत एवं पंडित शंकर राव के बहुतेरे शिष्य तबला वादक हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में पखावज एवं तबला, इन दोनों ताल वाद्यों के प्रचार एवं प्रसार में मंगल वेढेकर घराने का महत्वपूर्ण योगदान है। ख, कुदव सिंह एवं अवधि घराने की तबला परंपरा। कुदौ सिंह घराने एवं अवधि परंपरा में वैसे ही पिछली दो सदियों से मृदंग ही बजता आया है, किंतु उनके वहाँ भी कहीं कहीं तबले का प्रचार देखा जाता है, जो आज के युग की मांग के अनुसार उचित भी है। महाराज कुदौ सिंह देश के श्रेष्ठ मृदंगाचार्यों में से एक थे, किंतु वे तबला वादन का भी ज्ञान रखते थे। कुछ विद्वानों का मंतव्य है, उनके प्रमुख शिष्यों में से एक पंडित मोहन उपाध्याय ने केशव जी नाम के अपने एक बिहारी शिष्य को मुख्यतः तबले का ही शिक्षण दिया था। केशव जी की कर्मभूमि बिहार नहीं, अतः बिहार और बंगाल में कुदौ सिंह घराने की तबला परंपरा उन्हीं से फैली दिखती है। कुदौ सिंह के टीकमगढ़ वाले शिष्य लाला हरिचरण झल्ली ने आजिम खां जावरे वाले आजिम खां नहीं ने तबला सीखा था, जिनसे जिनके शिष्य प्रशिष्यों में रहमत खां, मिठू खां, जी एम नाइक, नंद कुमार असनारे इत्यादि कलाकारों के नाम लिए जाते हैं। तदुपरांत मनुजी मृदंगाचार्य के शिष्य गण में भी तबला बसता आया है, जिन में प्रेम बल्लभ, रमा बल्लभ मिश्र, शिष्या शोभा रानी कुदेशिया इत्यादि के नाम प्रमुख हैं। पृष्ठ संख्या 224। कुदौ सिंह घराने की एक शाखा जो अयोध्या पहुंचकर अवधि घराने में परिवर्तित हुई, उसके स्वामी रामदास जी के शिष्यों में कल्लू उस्ताद तबले के माने हुए कलाकार हुए। अयोध्या के ही मृदंगाचार्य स्वामी रामाशंकर दास पागल दास मृदंग के उपरांत तबले के भी प्रकांड पंडित थे। उन्होंने जिन देशी विदेशी शिष्यों को तबला सिखाया है, इसकी सूची काफ़ी लंबी है। कुदौ सिंह घराने का तबला वादन इसी घराने की वादन शैली पर आधारित है, जिसे बोल बंदिशों में आवश्यक परिवर्तन करके तबले के अनुरूप बनाया गया है। आज के युग में तबले के बहुसूत्र प्रचार के कारण कुदौ सिंह घराने का तबला युवा पीढ़ी में काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त कर चुका है। सातवां, कथक नृत्य के घरानों में तबले का प्रचार। तबला तथा पखावज के कथक नृत्य का घनिष्ठ संबंध रहा है। लखनऊ, जयपुर तथा बनारस जैसे नृत्य घराने, रायगढ़ जैसी नृत्य परंपरा के कथक नृत्यकार नृत्य के साथ साथ भजन, ठुमरी, होरी इत्यादि गायन शैलियों में तथा तबला एवं पखावज वादन में भी दक्ष होते हैं, क्योंकि नृत्य की पूर्णता के हेतु इन कलाओं से परिचित होना आवश्यक होता है। नृत्य से संबंधित होने के कारण इनके वादन पर तबले की मूल तकनीक के साथ ही नृत्य की बंदिशें एवं तोड़े टुकड़े चक्रदारों की झलक विशेष देखी जाती है। लखनऊ के पंडित कालकादीन बिंदादीन, पंडित अच्छन महाराज, पंडित शंभू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, जयपुर के पंडित नारायण प्रसाद, पंडित सुंदरलाल, पंडित चिरंजी लाल, पंडित जियालाल इत्यादि अनेक श्रेष्ठ कलाकारों के उपरांत आज के युग के पंडित बिरजू महाराज, श्रीमती सितारा देवी महाराज, कृष्ण कुमार नटराज, गोपी कृष्ण, पंडित सुंदरलाल गंगानी एवं दूसरे अनेक नृत्यकार तबला वादन के कुशल ज्ञाता हैं। इनमें से कई नृत्यकारों ने तो केवल तबले के ही शिष्य तैयार किए हैं, जिनमें सुप्रसिद्ध कथक पंडित जियालाल जी के शिष्य प्रोफेसर लालजी श्रीवास्तव इलाहाबाद, पंडित नारायण कोली पखावज तथा उस्ताद हिदायत खां जयपुर आदि तबला वादकों को के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं।